मैं निशांत सिंह इतिहास के तृतीय पत्र के चोल राजवंश टॉपिक को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। चोल राजवंश कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इस प्रदेश में तीन प्रमुख राज थे, चोल, चेर तथा पांडे। अति प्राचीन काल में इन तीनों राज्यों का अस्तित्व रहा है। अशोक के 13वें शिलालेख में इन तीनों राज्यों का स्वतंत्र स्वरूप से उल्लेख किया गया है, जो उसके साम्राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित थे। कालांतर में चोल ने अपने लिए एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। उनके उत्कर्ष का केंद्र तंजौर था और यही चोल साम्राज्य की राजधानी थी। चोल इतिहास के साधन साहित्य। चोल राजवंश का इतिहास जानने के लिए हम अनेक साहित्य ग्रंथों का उपयोग करते हैं। इनमें सर्वप्रथम संगम साहित्य 100 से 250 ईस्वी का उल्लेख किया जाता है। इसके अध्ययन से हम प्रारंभिक चोल शासन करी काल की उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पांडे तथा चेर राजाओं के साथ उनके संबंधों का भी ज्ञान होता है। जैन गोंडार के कलिंग तुपराणी से कुलोतुंग प्रथम की वंश परंपरा तथा उसके समय में कलिंग पर किए जाने वाले आक्रमण का परिचय मिलता है। ओटकुट्टम की विक्रम चोल कुलुतुंग द्वितीय तथा अर्राजराज द्वितीय के संबंध में रची गई उलाएं उनके विषय में कुछ ऐतिहासिक बातें बनाती हैं। सेक्किलार द्वारा रचित पेरिय पुराणम जो कुलोतुंग द्वितीय के काल में लिखा गया था के अध्ययन से तत्कालीन धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धिमित्र के व्याकरण ग्रंथ वीरशोलियम के से वीर राजेंद्र के समय की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश के प्राणांतक की पांडे विजय तथा राजेंद्र प्रथम की लंका विजय का विवरण ज्ञात होता है। चोल राजवंश के अभिलेख। चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रमाणिक साधन अभिलेख हैं जो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इनमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़ भाषाओं का प्रयोग हुआ है। विजयालय 859 से लेकर 871 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया था के बाद का चोल इतिहास मुख्यतः अभिलेखों से ही जाना जाता है। राजा राज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने का तथा अपने काल की घटनाओं और विजयों को लेखों में जोखने की प्रथा प्रारंभ की। इसका अनुसरण बाद के राजाओं ने किया। उनके समय के लेखों में लेडन दानपत्र तथा तंजोर मंदिर में उत्कीर्ण लेख उल्लेखनीय है। तंजोर के लेख उस मंदिर की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। राजेंद्र प्रथम के समय में प्रथम लेख तिरुवलंग गाडू तथा करंडय दानपत्र हैं जो उसकी उपलब्धियों का विवरण देते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख राजराज द्वितीय के समय में तिरुवेनंतपुरम अभिलेख है। यह चोल वंश के उत्कर्ष तथात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें होयसल राजाओं के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित की गई है जिनकी सहायता से चोल वंश का पुनरुद्धार संभव हो सकता है। राजा धीराज प्रथम के समय के मणिमंगलम अभिलेख से उसकी लंका विजय तथा चालुक्यों के साथ संघर्ष की सूचना मिलती है। यह वीर वीरेंद्र की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालता है। अब चोल वंश में प्रचलित सिक्के लेखों के अतिरिक्त धवलेश्वरम से चोलों के स्वर्ण सिक्कों का एक ढेर मिला है। इनमें उनकी समृद्धि का ज्ञान होता है। राजा धीराज प्रथम के कुछ सिक्के लंका से प्राप्त हुए हैं जिनसे वहां के उसके अधिकार की पुष्टि होती है। दक्षिणी कनारा से उसके कुछ रजत सिक्के मिले हैं। सामान्यतः चोल सिक्कों से संपूर्ण दक्षिण भारत के ऊपर उनका आधिपत्य प्रकट होता है। अब आइए जानते हैं विदेशी विवरण। चीन स्रोतों से चोल तथा चीनी राजाओं के बीच राजनयिक संबंध की सूचना मिलती है। चीन एक अनुश्रुति के अनुसार राजा राज प्रथम तथा कोलुतुंग प्रथम के काल में एक दूत मंडल चीन की यात्रा पर गया था। चीन यात्री चाउ जू कुआ 1225 ईस्वी के विवरण से चोल देश तथा वहां की शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ज्ञात हो जाती हैं। पेरिप्लस तथा टालमी के ग्रंथ में भी चोल देश का उल्लेख मिलता है। राजनैतिक इतिहास चोल वंश का। चोल राजवंश का प्रारंभिक इतिहास अंधकारपूर्ण है। संगम युग लगभग 100 से 250 ईस्वी के बीच में चोल वंश सी नरेश दक्षिण में शक्तिशाली थे। इस काल के राजाओं करिकाल लगभग 190 ईस्वी का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। संगम साहित्य में उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। वह एक वीर योद्धा था जिसने समकालीन चेर एवं पांड्य राजाओं को दबाकर रखा। उसके बाद चोलों की राजनीतिक शक्ति क्षीण हो गई तथा 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक उनका इतिहास अंधकारपूर्ण हो गया। यह संभवतः तमिल देश पर पहले कलभ्रों तथा फिर पल्लवों के आक्रमण के कारण हुआ। 9वीं सदी के मध्य में 850 ईस्वी के लगभग चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ। इस समय हम विजयालय नामक एक शक्तिशाली चोल राजा को पल्लवों के सामंत के रूप में उरैयुर त्रिचनापल्ली के समीपवर्ती क्षेत्र में शासन करता हुआ पाते हैं। उरैयुर ही चोलों का प्राचीन निवास स्थान था। इस समय पल्लवों तथा पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहे थे। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजोर पर अधिकार जमा लिया तथा वहां उसे दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज्य किया। आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी। यह विजयालय का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी भी था। प्रारंभ में वह पल्लव नरेश अपराजित का सामंत था तथा उसने श्री पूर्वीयम के युद्ध में अपनी स्वामी को पांडवों के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। इस युद्ध में पांडवों की शक्ति नष्ट हो गई परंतु अपराजित अपनी विजयों का उपभोग नहीं कर सका। आदित्य प्रथम ने उसकी हत्या कर दी तथा तोंड मंडलम को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद उसने पांड्यों से कोंगू प्रदेश छीन लिया तथा पश्चिमी गंगों को अपनी अधीनता में रहने के लिए बाध्य किया। उसने अपने पुत्र प्राणतक का विवाह चेर वंश की राजकुमारी के साथ किया। आदित्य ने कावेरी नदी के दोनों किनारों पर शैव मंदिर बनवाए थे। प्राणतक प्रथम 907 से ईस्वी 955। यह आदित्य प्रथम का पुत्र था और उसकी मृत्यु के बाद शासक बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को जारी रखा। उसने मदुरा के पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय पर आक्रमण किया। पांड्य नरेश ने सिंघल के राजा की सहायता प्राप्त की परंतु प्राणतक ने दोनों की सम्मिलित सेनाओं को वेल्लूर ने के युद्ध में हरा दिया। मदुरा पर प्राणतक का अधिकार हो गया तथा उसने मदुरै कोंड की उपाधि ग्रहण की। उसने पल्लवों की बची खुची शक्ति को समाप्त किया और वह दुम्बकों तथा वाणों को जीता। इस प्रकार 930 ईस्वी तक प्राणतक ने पश्चिमी घाट के चेर राज्य को छोड़कर उत्तरी पेन्नार से कुमारी अंतरी तक के संपूर्ण प्रदेश पर अपना एक छत्र अधिकार स्थापित कर लिया। परंतु प्राणतक को अपने शासनकाल के अंत में राष्ट्रकूटों से पराजित होना पड़ा। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने गणराज्य को जीतने के बाद चोल राज्य पर आक्रमण किया। तकोलम के युद्ध में उसने चोल सेना को बुरी तरह परास्त कर तोंड मंगलम पर अधिकार कर लिया। इसके प्राणतक की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया क्योंकि उत्तर तथा दक्षिण के सामंतों ने इस विपत्ति का लाभ उठाते हुए अपनी अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी। प्राणतक की मृत्यु के बाद लगभग 30 वर्षों 955 ईस्वी से लेकर 985 ईस्वी तक का काल चोल राज के लिए दुर्बलता एवं अव्यवस्था का काल रहा। उसके उत्तराधिकारी मंदरादित्य की रुचि धार्मिक कार्यों में अधिक थी। उसकी मृत्यु के समय 957 ईस्वी के लगभग चोल राज्य अत्यंत संकुचित हो गया। इसके बाद प्राणतक द्वितीय 957 से 973 ईस्वी तक राजा बना रहा। उसने अपने पुत्र आदित्य द्वितीय को युवराज बनाया। उसने वीर पांडे को पराजित किया तथा उसकी सेना ने सिंहल पर भी आक्रमण किया। प्राणतक द्वितीय के शासनकाल के अंत तक चोलों ने राष्ट्रकूटों से तोंड मंडलम को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। राज प्रथम चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक प्राणतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन था, जो 985 ईस्वी के मध्य राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा। उसका 30 वर्षीय शासन 985 से 1015 ईस्वी चोल राज्य का सर्वाधिक गौरवशाली युग रहा। वस्तुतः गणराज के समय से चोल राज्य का इतिहास समस्त तमिल देश का इतिहास बन जाता है। वह एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने अपनी अनेकानेक विजयों के फलस्वरूप लघुकाय चोल राज्य को एक विशालकाय साम्राज्य में परिणत कर दिया। राजराज की उपलब्धियां। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक प्राणतक द्वितीय सुंदर चोल राजराज की उपलब्धियां। राज्यरोहण के बाद राजराज ने कुछ वर्षों तक अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ किया। तत्पश्चात उसने दिग्विजय के निमित्त अपना सैनिक अभियान प्रारंभ किया। इसका विवरण इस प्रकार है। केरल पांडे तथा सिंहल की विजय। राजराज ने दक्षिण में केरल पांडे तथा सिंहल राजाओं के विरुद्ध अभियान किया। सबसे पहले उसने केरल के ऊपर आक्रमण कर वहां के राजा रवि वर्मा को त्रिवेणेन्द्रम में पराजित किया तथा इस विजय के उपलक्ष्य में कांडलूर शलैकलमत कांडलूर शलैकल कांडलूर शलैकल मरुत की उपाधि ग्रहण की। इसके बाद उसका पांडे राज्य पर आक्रमण हुआ। यहाँ का राजा अमर भुजंग था। तिरुवाल गांडु ताम्रपत्रों से सूचित होता है कि राजराज ने अमर भुजंग को पराजित कर बंदी बना लिया। उसकी राजधानी मदुरा को जीत लिया तथा विलिंद के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। राजराज के शासन के 20वें वर्ष का एक उल्लेख मिलता है जिससे सूचित होता है कि उसने मदुरा नगर को ध्वस्त कर दिया। कोल्लम कोल्लदेश तथा कोंडु गोलूर के राजाओं को पराजित किया और उसने समुद्र के शासक से अपनी सेवा करवाई थी। केरल तथा पांडे राजाओं को जीतने के पश्चात राजराज ने सिंहल की ओर ध्यान दिया। यहाँ का शासक महेंद्र पंचम था। वह केरल तथा पांडे शासकों का मित्र था तथा उसने राजराज के विरुद्ध केरल नरेश भास्कर वर्मा का साथ दिया। नीलकंठ शास्त्री का अनुमान है कि इन तीनों राज्यों ने चोल नरेश के विरुद्ध एक संघ बना लिया था। अतः केरल तथा पांडे की विजय के पश्चाताप पश्चात राजा राज सिंघल की ओर उन्मुख हुआ। उसने एक नौसेना के साथ सिंघल पर चढ़ाई की। सिंघल नरेश महेंद्र, जिनको महेंद्र भी कहा जाता है, पंचम पराजित हुआ। चोल सेना ने अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया तथा सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर राजराज का अधिकार हो गया। तिरुवालगांड ताम्रपत्रों में इस सफलता का काव्यात्मक विवरण इस प्रकार मिलता है। राम ने बंदरों की सहायता से सागर के आर पार एक पुल बनवाया तथा बड़ी कठिनाई से लंका के राजा का वध किया, किंतु शासक राम से कभी अधिक प्रतापी सिद्ध हुआ, क्योंकि उसकी शक्तिशाली सेना ने जल पोतों से समुद्र पार किया तथा लंका के राजा को जला दिया। सिंघल पर अधिकार करने के बाद राजराज ने वहां अपना एक प्रांत स्थापित किया। चोलों ने अनुराधापुर के स्थान पर पोल्लो नरुव को अपनी राजधानी बनाई तथा इसका नाम जन्नाथ मंगलम रख दिया। राजराज ने सिंघल में भगवान शिव के कुछ मंदिरों का निर्माण भी करवाया। राजराज के उपरोक्त प्रदेशों को संभवतः 979 से 993 ईस्वी के बीच जीता था। पश्चिमी गंगों की विजय। सिंघल को जीतने के बाद राजराज ने मैसूर क्षेत्र के पश्चिमी गंगों को जीता। उसके शासन के 6वें वर्ष का एक लेख कर्नाटक से मिला है, जिसमें उसने चोल नारायण कहा गया है। इससे पता चलता है कि उसने नोलंबो तथा गंगों को पराजित किया था। इस प्रकार उसकी गंगवादी, तड़ी गयवाड़ी तथा नोलंब वाड़ी के ऊपर अधिकार हो गया। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों से युद्ध। चोल नरेश उत्तम चोल के समय से ही चोलों तथा पश्चिमी चालुक्यों में अनबन थी। चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय ने संभवतः उत्तम चोल को पराजित भी कर दिया था। तैलप के बाद सत्याश्रय चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा। राजा राजराज की विशाल सेना का सामना नहीं कर सका तथा युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। कर्णदय दानपत्र से पता चलता है कि चोल हाथियों ने तुंगभद्रा के तट पर भारी उत्पात मचाया तथा चालुक्य सेनापति केशव युद्ध में बंदी बना लिया गया। राजेंद्र के कन्याकुमारी लेख से भी पता चलता है कि राजराज ने चालुक्यों को पराजित किया। सत्याश्रम के होट्टर लेख 1007 ईस्वी से सूचित होता है कि राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल ने 900,000 की विशाल सेना लेकर दोनूर बीजापुर जिले में तक के प्रदेश को रौंद डाला। उसने पूरे प्रदेश में भारी लूटपाट की। स्त्रियों, बच्चों तथा ब्राह्मणों का संहार किया तथा कई दुर्गों का नष्ट कर दिया, किंतु बाद में सत्याश्रय ने चोल सेनाओं को खदेड़ दिया तथा अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। इस प्रकार इस अभियान में चोलों को अतुल संपत्ति मिली। चोल राज्य की उत्तरी सीमा तुंगभद्रा नदी तक विस्तृत हो गई। वेंगी के पूर्वी चालुक्य राज्य में हस्तक्षेप। राजराज के समय में वेंगी राज्य की आंतरिक स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। 973 ईस्वी के लगभग वहां चोड भीम ने दानाण की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार जमा लिया तथा उसके दो पुत्रों शक्ति वर्मा तथा विमलादित्य को वेंगी से निकाल दिया। इन्होंने राजराज के दरबार में शरण ली। राजराज ने वेंगी के अपदस्थ राजकुमारों शक्ति वर्मण तथा विमलादित्य को भीम के विरुद्ध संरक्षण दिया। भीम ने वेंगी में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद तोंड मंडम पर आक्रमण किया। राजाराज ने उसे पराजित कर बंदी बना लिया तथा शक्तिवर्मन को वेंगी का राजा बनाया। अब वेंगी उसका संरक्षित राज्य बन गया। राजराज की इस सफलता से क्षुब्ध होकर कल्याणी के चालुक्य नरेश सत्याश्रय ने 1006 ईस्वी के लगभग वेंगी पर आक्रमण कर दिया। राजराज ने उसके विरुद्ध दो सेनाएं भेजी। प्रथम सेना का नेतृत्व उसके पुत्र राजेंद्र ने किया तथा उसने पश्चिमी चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया। इस सेना ने वनवासी पर अधिकार कर लिया तथा मान्यखेट को ध्वस्त किया। दूसरी चोल सेना ने वेंगी पर आक्रमण किया। वहां उसने हैदराबाद के उत्तर पश्चिम में कुलपक के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। सत्याश्रय को विवश होकर वेंगी छोड़ना पड़ा और बड़ी कठिनाई से वह अपने राज्य को बचा पाया। चोल सेना उसके राज्य से अतुल संपत्ति लेकर वापस लौटी। इस प्रकार शक्तिवर्मन वेंगी पर शासन करता रहा, लेकिन वह पूर्णतया चोलों पर ही आश्रित रहा। राजराज ने अपनी कन्या कुंदवा देवी का विवाह उसके छोटे भाई विमलादित्य के साथ कर दिया, जिसने दोनों के संबंध और अधिक मैत्रीपूर्ण हो गए। वेंगी को अपना संरक्षित राज्य बना लेने के बाद राजराज ने कलिंग राज्य को भी जीत लिया। अपने शासन के अंत में राजराज ने मालदीव को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इस द्वीप की विजय उसने अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता से की थी। अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप राजराज ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उसके साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी तक का संपूर्ण दक्षिण भारत, सिंहल तथा मालदीव का कुछ भाग शामिल था। इस प्रकार वह अपने समय के महानतम विजेताओं एवं साम्राज्य निर्माताओं में से था। अपनी महानता को सूचित करने के लिए उसने चोल मार्तंड, राजाश्रय राज मार्तंड, अरिमोली, चोलेंद्र सिंह जैसी उच्च सम्मान परक उपाधियां धारण की। राज राज प्रथम की सांस्कृतिक उपलब्धियां। महान विजेता के साथ साथ राजराज कुशल प्रशासक तथा महान निर्माता भी था। उसने समस्त भूमि की नाप कराई तथा उचित कर निर्धारित किया। विभिन्न मंडलों में योग्य अधिकारी की नियुक्ति की गई। उसने एक स्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। लेखों से उसके कई सामंतों तथा अधिकारियों की सूचना उनने एक स्थायी की सूचना मिलती है। उसने सोने, चांदी तथा तांबे के विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। राजराज ने अपने पुत्र राजेंद्र को युवराज बनाया तथा उसके ऊपर शासन की कुछ जिम्मेदारियां सौंप दी। राजेंद्र ने अत्यंत कुशलतापूर्वक सैनिक तथा प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह किया। वह शिव का अनन्य भक्त था तथा उसने अपनी राजधानी में राजा राजेश्वर का भव्य मंदिर बनवाया था। दक्षिण भारत के इतिहास के वैभवशाली युग का यह आज तक सर्वोत्तम स्मारक है तथा तमिल स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। किंतु राजा के रूप में वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसने श्रीविजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयो तुंगवर्मन को नागपट्टम में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए उत्साहित किया तथा स्वयं एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। उसने बौद्ध विहार को ग्राम दान दे में दिया तथा जैन धर्म को भी प्रोत्साहन प्रदान किया। इस प्रकार राजराज एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक, निर्माता तथा धर्म सहिष्णु सम्राट था। राजनैतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से उसका शासनकाल चोल वंश के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। उत्तरी पूर्वी भारत के इस सफल सैन्य अभियान द्वारा राजेंद्र ने उत्तर भारत के राजाओं के बीच अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया तथा चोलों की धाक संपूर्ण देश में जम गई। अब सुनने दीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया की विजय। राजेंद्र चोल केवल भारतीय भूभाग में दिग्विजय करने से ही संतुष्ट नहीं हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय वैजयंती फहराने के उपरांत उसने दक्षिणी पूर्वी एशिया में सैन्य अभियान किया। उसने श्रीविजय शैलेंद्र राज्य को जीतने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना भेजी। इस राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा तथा अन्य द्वीप सम्मिलित थे। उसका यह अभियान भी पूर्णतया सफल रहा। शैलेंद्र शासक संग्राम विजयो तुंगवर्मन पराजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया। चोल सेना ने कडारम तथा श्रीविजय को जीत लिया। शैलेंद्र नरेश ने चोल शासक की अधीनता में रहने का वचन दिया तथा इस आश्वासन पर उसका राज्य वापस लौटा दिया गया। इस सैन्य अभियान का विवरण तिरुवाल गाडू ताम्रपत्र में मिलता है, जिसके अनुसार राजेंद्र ने शक्तिशाली नौसेना के साथ समुद्र पार करके कटार को जीत लिया था। राजेंद्र के शासनकाल के 8वें वर्ष में उत्कीर्ण करंडय ताम्रपत्रों में भी इस विजय की चर्चा मिलती है। इससे यह भी सूचित होता है कि काम्बुज के शासक ने उसके साथ संधि स्थापित करने के लिए प्रार्थना की थी। राजेंद्र चोल द्वारा श्री विजय राज्य पर आक्रमण किए जाने तथा उसे जीतने का क्या उद्देश्य था, इस विषय में विद्वान एकमत नहीं हैं। के आर हॉल का अनुमान है कि चोल राज्य तथा चीन के बीच व्यापारिक संबंध में यह राज्य एक कड़ी का कार्य करता था, अतः राजेंद्र ने श्री विजय को जीतना आवश्यक समझा। नीलकंठ शास्त्री तथा रमेश चंद्र मजूमदार जैसे विद्वानों का विचार है कि उस समय चोल का दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार संबंध बढ़ता जा रहा था। इस समय श्री विजय का राज्य बाधा उत्पन्न कर रहा था, अतः राजेंद्र ने इस राज्य पर आक्रमण कर दक्षिणी पूर्वी द्वीपों के साथ अपने राज्य के व्यापारिक संबंध को निर्विघ्न बना दिया। श्री विजय के साथ साथ चोल सेना ने अंडमान निकोबार अराकान तथा पेरू बर्मा में स्थित के राज्यों को भी जीत लिया। विद्रोहों का दमन। राजेंद्र चोल को अपने शासन के अंतिम दिनों में पांड्य तथा केरल राज्यों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय राजेंद्र अपने राज्य से दूर दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों की विजय में लगा हुआ था, उसी समय उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए इन राज्यों ने विरोध का झंडा खड़ा कर दिया। उन्हें अनेक सामंतों चेर वेनाड कूपक आदि से भी सहायता मिली। इन विद्रोहियों का नेतृत्व पांड्य नरेश सुंदर पांड्य ने किया, किंतु राजेंद्र विचलित नहीं होने वाला था। उसने कठोर रुख अपनाते हुए अपने पुत्र युवराज राजाधिराज को इन्हें दबाने के लिए भेजा। राजाधिराज ने कई राजाओं एवं सामंतों की हत्या कर दी तथा विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। 1041 ईस्वी में सिंघल नरेश विक्रमाबाहु के नेतृत्व में सिंघल ने स्वतंत्र होने की चेष्टा की। राजेंद्र ने राजाधिराज को एक सेना के साथ सिंघल पर आक्रमण करने को भेजा। ज्ञात होता है कि राजाधिराज ने युद्ध में सिंघल नरेश का सर काट लिया तथा वहां के विद्रोह का अत्यंत बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया। पश्चिमी चालुक्यों से पुनः संघर्ष। राजेंद्र को अपने शासन के अंत में वेंगी के प्रश्न पर पश्चिमी चालुक्यों से पुनः संघर्ष करना पड़ा। चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने वेंगी पर आक्रमण कर चोल सत्ता को चुनौती दी। उसने राजेंद्र द्वारा संरक्षित वेंगी नरेश राजराज के विरुद्ध उसके सौतेले भाई विजयादित्य को वेंगी की गद्दी पर आसीन करने का प्रयास किया। राजेंद्र इस समय तक काफी वृद्ध हो चुका था, अतः उसे अपने तीन सेनापतियों को चालुक्यों के विरुद्ध भेजा। चोलों तथा चालुक्यों की सेनाओं के बीच कली दीदी में एक युद्ध हुआ जो निर्णायक नहीं रहा। इस बीच राजेंद्र की मृत्यु हो गई। कालांतर में उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी राजाधिराज ने कई युद्ध में चालुक्यों की सेनाओं को पराजित कर वेंगी में अपनी स्थिति पुनः सुदृढ़ कर लिया। इस प्रकार राजेंद्र चोल की सेना ने अपनी विजय वैजयंती गंगा से सिंघल द्वीप तक बंगाल की खाड़ी के पार जावा सुमात्रा एवं मलय प्रायद्वीप पर फहरा दिया। यह उसकी अद्भुत सैनिक सफलता थी जो प्राचीन इतिहास में सर्वथा बेजोड़ है। निसंदेह वह प्राचीन भारत के महानतम विजेताओं में से एक था। उसके समय में चोल साम्राज्य शक्ति तथा विस्तार की दृष्टि से उन्नति की चोटी पर पहुंच गया। विजेता होने के साथ साथ वह एक महान निर्माता भी था। उसने सिंचाई के लिए 16 मील लंबा एक भव्य तालाब खुदवाया था। वह शिक्षा एवं साहित्य का महान उन्नायक भी था। उसने वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए एक विशाल विद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। वह युद्ध क्षेत्र में जितना महान था, शांति काल में उतना ही कर्मठ। राजेंद्र चोल की मृत्यु 1044 ईस्वी के लगभग हुई। चोल राजवंश के इतिहास में राजराज तथा उसके पुत्र उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल की उपलब्धियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इनके शासनकाल में चोल साम्राज्य राजनैतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का अधिकारी बना। वस्तुतः ये दोनों शासक ही चोल शक्ति के मुख्य निर्माता थे। राजाधिराज प्रथम शासनकाल 1044 से 1052 ईस्वी। राजेंद्र चोल का पुत्र तथा उत्तराधिकारी राजाधिराज प्रथम हुआ। वह 1018 ईस्वी से ही युवराज के रूप में अपने पिता के सैनिक एवं प्रशासनिक कार्य में सहायता देता रहा था। राजा होने पर उसे चतुर्दिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा, परंतु उसने बड़ी सफलता से अपने राज्य में शांति एवं व्यवस्था स्थापित किया। राजाधिराज ने पांड्य, केरल तथा सिंहल के विरोधी शासकों को पराजित किया। उसने अपने पिता की विस्तारवादी नीति को जारी रखा। वेंगी में उसने पश्चिमी चालुक्यों की सेना को सोमेश्वर के पुत्र विक्रमादित्य के नेतृत्व में परास्त किया। तत्पश्चात चोल सेना ने पश्चिमी चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया। सर्वप्रथम उसने कुलपक के दुर्ग पर अधिकार कर उसमें आग लगा दिया। चालुक्य सामंतों एवं सेनापतियों को जीतते हुए चोल सेना कृष्णा नदी के तट पर जा पहुंची। वहां पुंडूर के युद्ध में राजाधिराज ने वायु चालुक्य सेना को बुरी तरह परास्त किया। उसने यादगीर पर अधिकार कर लिया तथा चालुक्यों की राजधानी कल्याणी को लूटा। वहां उसने अपना वीराभिषेक किया तथा विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। कल्याणी से वह निशानी के रूप में द्वारपालक की एक सुंदर प्रतिमा उठा ले आया, परंतु 1050 ईस्वी तक पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने चोल सेनाओं को अपने राज्य से बाहर भगा दिया। उसने वेंगी के चालुक्य शासक राजा राज को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। कलिंग को भी उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में किया। चोल नरेश राजाधिराज ने अपने छोटे भाई युवराज राजेंद्र द्वितीय की सहायता से सोमेश्वर के विरुद्ध दूसरा सैनिक अभियान किया। कोप्पम के युद्ध में 1052-53 ईस्वी राजाधिराज लड़ता हुआ मारा गया, परंतु उसके भाई राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया। राजेंद्र ने युद्ध क्षेत्र में ही अपना अभिषेक किया। वह कोल्हापुर तक बढ़ा और वहां अपना विजय स्तंभ स्थापित करने के बाद अपनी राजधानी वापस लौट आया। राजेंद्र द्वितीय 1052 से 1064 ईस्वी। यह राजाधिराज का छोटा भाई था और उसकी मृत्यु के बाद राजा बना। उसके शासनकाल में भी चोल चालुक्य संघर्ष चलता रहा। सोमेश्वर ने वेंगी की गद्दी पर विजयादित्य सप्तम के पुत्र शक्तिवर्मन द्वितीय को आसीन किया था तथा उसकी मदद से चमुंडराज के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। उसने अपने दो पुत्रों विक्रमादित्य तथा जयसिंह को गंडवाड़ी में चोल राज्य पर आक्रमण करने को भेजा। चोल नरेश राजेंद्र ने अपने पुत्र राजमहेंद्र तथा भाई वीर राजेंद्र के साथ दोनों मोर्चों पर सोमेश्वर का प्रतिरोध किया। वेंगी में उनकी सेना ने चमुंडराज तथा शक्तिवर्मन को पराजित किया तथा वे दोनों मार डाले गए। गनवाड़ी के चालुक्य आक्रमणकारी कुड्डल संगम तुंगभद्रा के संगम पर स्थित कुंडली के युद्ध में परास्त किए गए तथा उन्हें चोल राज से भागना पड़ा। इस प्रकार सोमेश्वर दोनों ही मोर्चों पर बुरी तरह असफल रहा। इस असफलता के लिए कुछ दिनों बाद राजेंद्र द्वितीय तथा उसके पुत्र राज महेंद्र की मृत्यु लगभग 1063 से 1064 हो गई। वह अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख सकने में सफल रहा। वीर राजेंद्र ईस्वी 1064 से 1070, यह राजेंद्र द्वितीय के पश्चात राजा हुआ। इसके समय में भी चोल चालुक्य संघर्ष चलता रहा। चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने उसके राज्य पर पूर्व तथा पश्चिम दोनों ओर से आक्रमण किया। वीर राजेंद्र की सेना ने वेंगी में चालुक्यों को हराया। पश्चिम में तुंगभद्रा के तट पर उसने सोमेश्वर की सेना को 1066 ईस्वी के लगभग बुरी तरह परास्त किया। सोमेश्वर ने पुनः अपनी सेना संगठित की तथा चोल शासक को कुंडल संगमम के युद्ध के लिए चुनौती दिया। वीर राजेंद्र वहां गया, परंतु सोमेश्वर स्वयं युद्ध क्षेत्र में उपस्थित नहीं हुआ। वीर राजेंद्र ने पुनः चालुक्य सेना को बुरी तरह हराया तथा तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया। तत्पश्चात वेंगी में उसने विजयादित्य को पराजित किया। उसने कृष्णा नदी पार कर कलिंग पर आक्रमण किया। वहां भी पश्चिमी चालुक्यों एवं उनके सहायकों से उसने उसका भीषण युद्ध हुआ। इसी बीच 1068 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या कर ली। उसके उत्तराधिकारी सोमेश्वर द्वितीय ने काल में राजेंद्र ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। सोमेश्वर द्वितीय का छोटा भाई विक्रमादित्य चोल नरेश वीर राजेंद्र से जा मिला। उसने अपनी पुत्री का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया और उसे वेंगी के चालुक्य राज्य के दक्षिण भाग का राजा बनवा दिया। विक्रमादित्य ने उसे उसकी आधीनता के शासन करना स्वीकार कर लिया। वीर राजेंद्र ने सिंघल नरेश विजय बाहु प्रथम के विरुद्ध सैनिक अभियान किया। विजय बाहु पराजित हुआ तथा उसने भागकर वातगिरी में शरण ली। उसने श्री विजय में कडारम को जीतने के लिए भी एक नौसेना भेजी। 1070 ईस्वी के लगभग उसकी मृत्यु हो गई। वीर राजेंद्र का पुत्र अधिराजेंद्र उसके बाद चोल वंश का शासक हुआ, परंतु वह एक वर्ष के भीतर ही वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश राजेंद्र द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। 1070 ईस्वी में राजेंद्र कोतुलुंग कोलुतुंग प्रथम के नाम से चोल वंश की गद्दी पर बैठा। वीर राजेंद्र का पुत्र कोलुतुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी, यह पूर्वी चालुक्य नरेश राजराज का पुत्र था, किंतु उसमें चोल रक्त का मिश्रण था। उसकी माता राजेंद्र चोल की कन्या थी। उसका स्वयं का विवाह कोपम युद्ध के विजेता राजेंद्र द्वितीय की पुत्री से हुआ था। कोलुतुंग प्रथम ने अपने विद्रोहियों को दबाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लिया। वह अपने समय का एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। उसने पश्चिमी चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ को नंगिली में पराजित कर गडवाड़ी पर अधिकार जमा लिया। इस बीच 1072 से 1073 ईस्वी त्रिपुरी के है शासक यश कर्ण ने उसके वेंगी राज्य पर आक्रमण कर दिया, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। परंतु सिंघल के राजा विजय बाहु ने कोलोतुंग के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। 1072 ईस्वी में उसने अपना अभिषेक किया तो कोलोतुंग को उसकी स्वाधीनता स्वीकार करना पड़ा। कालांतर में दोनों के बीच संधि हो गई तथा कोलोतुंग ने अपनी एक पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार के साथ कर दिया। कोलोतुंग ने पांड्य तथा केरल राजाओं के भी विद्रोह का सामना करना पड़ा। वह एक शक्तिशाली सेना के साथ दक्षिणी अभियान पर गया, जहां कई बार युद्धों में उसने पांडे और केरल के राजकुमारों को परास्त किया और उन्हें अपनी अधीनता में रहने के लिए बाध्य किया। परंतु इन प्रदेशों का प्रशासन उसने स्थानीय शासकों के हाथों में छोड़ दिया। 1077 ईस्वी में 7200 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन गया। 1088 ईस्वी में सुमात्रा से प्राप्त एक तमिल लेख से पता चलता है कि श्री विजय ने तमिल सौदागरों की एक श्रेणी निवास करती थी। वेंगी के विजयादित्य सप्तम की मृत्यु के बाद कोलोतुंग ने अपनी पुत्रों को वहां से वायसराय के रूप में शासन करने के लिए भेजा। 1110 ईस्वी के लगभग कलिंग राज्य में विद्रोह हुआ। कोलोतुंग ने अपनी सेनापति करुणाकर तोंडैमान के नेतृत्व में एक सेना वहां भेजी। कलिंग नरेश अनंत वर्मन पराजित हुआ तथा उसने भागकर जान बचाई। चोल सेना अपने साथ लूट का अतुल धन लेकर लौटी। 1015 ईस्वी तक कोलोतुंग प्रथम अपने साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखने में समर्थ रहा। केवल सिंहल का राज्य ही उसके साम्राज्य के बाहर था, परंतु उसके शासनकाल के अंत में मैसूर एवं वेंगी में विद्रोह उठ खड़े हुए। 1018 ईस्वी के लगभग विक्रमादित्य षष्ठ ने वेंगी पर अधिकार कर लिया तथा इसी समय होयसलों ने मैसूर से चोल सेना को बाहर खदेड़ कर वहां अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस प्रकार कुलोतुंग प्रथम का राज्य केवल तमिल प्रदेश तथा कुछ तेलुगु क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। कोलोतुंग प्रथम चोल वंश का एक महान शासक था। उसका दीर्घकालीन शासन कुल मिलाकर समृद्धि एवं सफलता का काल रहा। उसने प्रजाहित को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा तथा इसके लिए उसने सुधार किए। चोल लेखों एवं परंपराओं में उसे शुडगम तवित करों को हटाने वाला कहा गया है, जिससे उसकी लोकोपकारिता सूचित होती है। अपने शासन के अंत में उसने शांतिपूर्वक राज्य किया। उसने चिदंबरम के नंदिर तथा श्रीरंगम की समाधि का वर्धन करवाया। 1120 ईस्वी के लगभग उसकी मृत्यु हो गई। विक्रम चोल यह कुलोतुंग का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था, जिसने 1120 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक शासन किया। 1126 ईस्वी में विक्रमादित्य षष्ठ की मृत्यु के बाद उसने वेंगी पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। उसने 1133 ईस्वी में लगभग गोदावरी नदी तट पर विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी सोमेश्वर तृतीय की सेना को परास्त किया। गंडवाड़ी पर आक्रमण कर उसने कोलर जिले पर अधिकार कर लिया। कुलोतुंग द्वितीय विक्रम चोल के बाद उसका पुत्र कुलोतुंग द्वितीय 1133 ईस्वी में राजा बना तथा 1150 ईस्वी तक शांतिपूर्वक शासन करता रहा। उसकी कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी। उसने चिदंबरम के मंदिर में नवीनीकरण एवं संवर्धन का कार्य जारी रखा। कोलोतुंग ने इस मंदिर के प्रांगण में गोविंदराज की प्रतिमा को हटवाकर समुद्र में फिकवा दिया। राजराज द्वितीय यह कोलोतुंग द्वितीय का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था, जिसने लगभग 1150 ईस्वी से 1173 ईस्वी तक शासन किया। उसके समय में चारों ओर शक्तिशाली सामंतों का उदय हुआ। उसका राज्य संपूर्ण तेलुगु प्रदेश, कोंगुनाद के अधिकांश भागों वाले गंडवाड़ी के पूर्व भाग तक फैला हुआ था। उसका कोई पुत्र नहीं था, अतः 1166 ईस्वी में उसने विक्रम चोल के पुत्री के पौत्र राजा धीराज द्वितीय को अपना युवराज नियुक्त किया। राजा धीराज द्वितीय यह राजा राज का उत्तराधिकारी था, जिसने 1173 ईस्वी से 1178 ईस्वी तक शासन किया। इस समय पांडे वंश में कुलशेखर तथा वीर पांडे के बीच उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष छिड़ा हुआ था। राजा धीराज ने वीर पांडे का पक्ष लिया तथा कुलशेखर का समर्थन लंका के राजा पराक्रम बाहु ने किया। राजा धीराज को सफलता मिली तथा उसने वीर को पांडे का राजा बनवाया, परंतु इससे चोलों को कोई लाभ नहीं हुआ। कुलोतुंग द्वितीय तृतीय यह राजा धीराज का उत्तराधिकारी था, परंतु राजा धीराज के साथ उसका संबंध अज्ञात है। वह चोल वंश का अंतिम महान शासक था। 1182 ईस्वी में उसने वीर पांड्य को पराजित किया तथा उसे अपनी अधीनता में रहने के लिए बाध्य किया। कुलोतुंग ने होयसल तथा चेर राजाओं को भी जीतकर अपनी अधीनता में किया। कुछ समय बाद पांड्यों ने जटावर्मन कुलशेखर के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। 1205 ईस्वी में कुलोतुंग ने पांड्य राज्य पर अधिक आक्रमण किया। उसकी सेना में मदुरा को लूटा तथा पांड्यों के अभिषेक मंडल को ध्वस्त कर दिया, परंतु कुलशेखर को उसका राज्य पुनः वापस कर दिया गया। कुलोतुंग ने तेलुगु चोड़ों को भी दबाकर अपने नियंत्रण में रखा। उसने 1218 ईस्वी तक शासन किया। उसका काल कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए भी प्रसिद्ध है। राजराज तृतीय। कुलोतुंग का उत्तराधिकारी राजराज तृतीय एक निर्बल राजा था। उसके राज्य में चतुर्दिक विद्रोह एवं अराजकता फैल गई। पांड्य नरेश सुंदर ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया, परंतु होयसल नरेश नरसिंह द्वितीय की सहायता से उसे मुक्ति मिली। तेल्लारू के युद्ध में उसे यादव सरदार कोपेरुजिंग ने परास्त कर बंदी बना लिया। 1231 ईस्वी में होयसल सेना की सहायता से वह पुनः अपनी स्वतंत्रता एवं राज्य पाने में सफल हुआ। राजराज किसी प्रकार 1256 ईस्वी तक राज्य करता रहा, परंतु उसका अधिकार नाम मात्र का ही रहा। राजेंद्र तृतीय यह चोल वंश का अंतिम शासक था। इसने चोल शक्ति का पुनरुद्धार करने का प्रयास किया। उसने पांडे पर आक्रमण कर सुंदर पांडे द्वितीय को पराजित किया, परंतु चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय ने पांडवों का साथ दिया, जिससे राजेंद्र को के प्रयासों सफल न हो सके। उसने एक युद्ध में राजेंद्र को परास्त किया तथा बाद में उससे संधि कर ली। 1251 ईस्वी में पांडे वंश का शासन जटावर्मन सुंदर पांडे नामक एक शक्तिशाली राजा के हाथ में आया। उसने चालुक्य होयसल काकतीय राज्यों को जीता और चोल शासक राजेंद्र तृतीय को अपनी अधीनता में रहने के लिए बाध्य किया। इसके बाद 1279 ईस्वी तक वह पांडे नरेश के सामंत की हैसियत से शासन करता रहा। 1279 ईस्वी में उसे पांडे शासक कुलशेखर के हाथों पुनः पराजित होना पड़ा। इसके साथ ही चोल राज्य तथा शासन का अंत हुआ। पांडे नरेश कुलशेखर समस्त चोल मंडल का सार्वभौम शासक बन बैठा। चोल युगीन संस्कृति के अंदर आइए जानते हैं चोल युगीन शासन प्रबंध। चोल संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी शासन व्यवस्था है। चोल सम्राटों ने एक विशिष्ट शासन व्यवस्था का निर्माण किया, जिसमें प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ ही बहुत अधिक मात्रा में स्थानीय स्वायत्तता लोकल ऑटोनॉमी भी थी। चोल प्रशासन के अध्ययन के लिए हमें मुख्यतः लेखों पर निर्भर करना पड़ता है। साथ ही साथ इस काल के साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन से भी न्यूनाधिक जानकारी मिल जाती है। सम्राट। चोल सम्राट अपने उत्कर्ष काल में संपूर्ण दक्षिण भारत में फैला हुआ था। अन्य युगों की भांति इस समय भी शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक ही था, किंतु राजा के अधिकारियों आचरण एवं उनकी शान शौकत में पहले से अधिक वृद्धि हो गई। उसका अभिषेक एवं भव्य राजप्रसाद में होता था और यह प्रभावशाली उत्सव हुआ करता था। चोल शासक अपना राज्याभिषेक तंजोर, गंगैकोंड, चोलपुरम, चिदंबरम, कांचीपुरम आदि स्थानों में किया करते थे। वे चक्रवर्तीगल, त्रिलोक सम्राट जैसे उच्च सम्मानपरक उपाधियां ग्रहण करते थे। मंदिरों में सम्राट की प्रतिमा भी स्थापित की जाती थी तथा मृत्यु के बाद दैव रूप में उसकी पूजा होती थी। तंजोर के मंदिर में सुंदर चोल तथा राजेंद्र चोल की प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं। सम्राट बहुसंख्यक कर्मचारियों, सामंतों एवं परिचारकों से घिरा रहता था। चीनी लेखक चाउ जू कुआ सम्राट के भोज का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत करता है। राजा तथा उसके दरबार के चार मंत्री राज सिंहासन के नीचे खड़े होकर अभिवादन करते थे। तत्पश्चात वहां उपस्थित सभी लोग संगीत, गीत और नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। राजा शराब नहीं पीता है, किंतु वह मांस खाता है। देशी प्रथा के अनुसार वह सूती वस्त्र पहनता है। अपनी मेज के लिए तथा रक्षक के रूप में कार्य करने के लिए उसने हजारों नर्तकी लड़कियों को नियुक्त कर रखा है। प्रतिदिन 3,000 लड़कियां बारी बारी से उसकी सेवा में लगी रहती हैं। इससे स्पष्ट है कि सम्राट की दिनचर्या काफी शान शौकत से परिपूर्ण थी। सम्राट के आदेश अक्सर मौखिक होते थे, जो उसके पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रांतों में सावधानीपूर्वक लिखकर पहुंचा दिए जाते थे। सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेता था, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। सम्राट के कार्यों में सहायता देने के लिए परिचारकों तथा शासन के प्रमुख विभागों का प्रतिनिधि करने वाला मंत्री का एक वर्ग होता था। इसके अतिरिक्त उसका अपना कार्यालय भी होता था। चोल सम्राट निरंकुश नहीं होता था तथा धर्म तथा अनाचार के विरुद्ध कार्य नहीं करता था। वह कानून का निर्माता न होकर सामाजिक नियमों एवं व्यवस्था का प्रतिपालक होता था। सामाजिक हितों के कार्यों जैसे मंदिर निर्माण, कृषि योग्य भूमि तथा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था, विद्यालयों और औषधालयों की स्थापना आदि में उसकी विशेष रुचि होती थी। राज परिवार के अन्य सदस्य, दरबारी, अधिकारी आदि सभी सम्राट के आदर्श का अनुसरण करते थे। धार्मिक मामलों में सम्राट राजगुरुओं की परामर्श से ही कार्य करता था। अधिकारी तंत्र। चोल प्रशासन में एक सुविस्तृत अधिकारी तंत्र ब्यूरोक्रेसी था, जिसमें विभिन्न दर्जे के पदाधिकारी होते थे। केंद्रीय अधिकारियों की कई श्रेणियां होती थी। सबसे ऊपर की श्रेणी को पेरुंद नम तथा नीचे की श्रेणी को सिरुदनम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उडन कुट्टम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार ये राजा के निजी सहायक थे, जो राजा तथा नियमित कर्मचारी तंत्र के बीच संपर्क का कार्य करते थे। उनका कार्य संबंधित विभागों के कर्मचारियों को राज्य की नीति बताना तथा राजा को प्रांतों की आवश्यकताओं से अवगत कराना। राज्य के प्रबंध में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। समाज में अधिकारियों का अलग वर्ग होता था। अधिकारियों के पद अनुवांशिक होने लगे थे तथा नागरिक और सैनिक अधिकारियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। उनकी नियुक्ति तथा पदोन्नति के नियमों के विषय में हमें ज्ञात नहीं है। पदाधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमिखंड दिए जाते थे। चोल लेखों से पदाधिकारियों की कार्य प्रणाली पर प्रकाश पड़ता है। पता चलता है कि सम्राट जब किसी विषय पर निर्णय देता था तो उससे संबंधित सभी अधिकारी उपस्थित रहते थे। सर्वप्रथम ओलय नामक पदाधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था। इसकी जांच ओलय नायगम नामक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाती थी। तत्पश्चात इस आदेशों को स्थाई पंजियों में लिपिबद्ध कर संबंधित विभागों को पहुंचा दिया जाता था। अब आइए जानते हैं चोल साम्राज्य की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था, जिसका शासन एक वायसराय के हाथ में होता था। इस पद पर प्रायः राजकुमारों की ही नियुक्ति की जाती थी, किंतु कभी कभी इस पद पर वरिष्ठ अधिकारियों अथवा पराजित किए गए राजाओं की भी नियुक्ति हो जाती थी। मंडलम के शासकों के पास अपनी सेना तथा न्यायालय होते थे। कालांतर में यह पद अनुवांशिक हो गया। प्रत्येक मंडलम में केंद्रीय सरकार की एक प्रतिनिधि रहता था, जो मंडलीय शासक की गतिविधियों पर दृष्टि रखता था। मंडलम का विभाजन कई कोट्टम अथवा वलनाडु में हुआ था, जो आजकल की कमिश्नरियों के बराबर होते थे। प्रत्येक कोट्टम में कई जिले होते थे। जिले की संख्या नाडु थी। नाडु की सभा को नाट्टार कहा जाता था, जिसमें सभी गांव तथा नगरों के प्रतिनिधि होते थे। इसका मुख्य कार्य भू राजस्व का प्रबंध करना था। इसे किसी भू राजस्व में छूट दिला देने का भी अधिकार था। नाडू अपने नाम से दान देते तथा अक्षय निधियों निधियां प्राप्त करते थे। नट्टार को भूमि का वर्गीकरण तथा तदनुसार राजस्व निर्धारित करने का भी काम सौंपा गया था। इसे किसी भू राजस्व में छूट दिला देने का भी अधिकार था। कभी कभी यह मंदिर का प्रबंध भी करती थी। कोलुतुंग के शासनकाल के 10वें वर्ष पुरम लय नाडू के नट्टार तीर्थ मलय मंदिर का प्रबंध देखने के लिए पुजारी की नियुक्ति की थी। करिकाल कालीन जंबय लेख से पता चलता है कि वाण गप्पांडी के नाडू को वलयूर नक्कर योग वाणर के मंदिर का प्रबंध सौंपा गया था। कुछ स्थानों में हम नट्टार को अन्य संगठनों तथा राजकीय पदाधिकारियों के साथ मिलकर न्याय प्रशासन एवं अन्य कार्यों में सहयोग करते हुए पाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अथवा भूमि का प्रबंध करने के उद्देश्य से विभिन्न नाडुओं को मिलाकर संगठन बनाए जाते थे। कोलुतुंग तृतीय के समय में तिरुवार गलुम मंदिर के एक लेख में संपूर्ण नाडू के एक संगठन का उल्लेख मिलता है। राजराज प्रथम के एक लेख में 12 नाडुओं की महासभा की चर्चा है। नाडू के निर्दोष 500 तथा मुखिया का भी उल्लेख हुआ है। नाडू के खर्च के लिए नाडू विनियोगम नामक कर लिया जाता था। नाडू के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ थे जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की एक सभा होती थी। व्यापारियों की संस्थाओं को सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त थी। उनके पास अपनी सेना भी थी जिससे वे अपनी सुरक्षा करते थे। बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित किए जाते थे जिन्हें तनी यूर अथवा तंकुरम कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। अब आइए जानते हैं चोल प्रशासन में ग्राम शासन। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। उत्तर मेरूर से प्राप्त 1919 तथा 929 ईस्वी के दो लेखों से के आधार पर हम ग्राम सभा का कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली की विस्तृत वर्णन प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। इस उद्देश्य से उसे व्यापक अधिकार प्राप्त थे। ग्रामों में मुख्यतः दो प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थीं। प्रथम उर। शास्त्री के अनुसार इससे तात्पर्य पुर से है, इस जो गांव और नगर दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ लेखों में उराए इशैंदु उरोम अर्थात ग्रामवासी उर के रूप में मिले उल्लेखित मिलता है। इससे सूचित होता है कि उर की बैठकों में सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे और यह सामान्य मनुष्यों की संख्या थी। उर की कार्य समिति को अलुगणम अथवा गणम कहा जाता था। समिति के सदस्यों की संख्या अथवा उनके चुनाव की विधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि कुछ सभाओं के लिए एक ही कार्य समिति होती थी जो सभी विषयों के लिए देखरेख करने के लिए उत्तरदायी थी, क्योंकि कुछ कार्य समितियों में हमें विद्वान ब्राह्मणों को भी सदस्य के रूप में देखते हैं। कहीं कहीं एक ही ग्राम में दो उर संगठन कार्य करते थे। 1227 ईस्वी में शांत मंगलम में दो उर थे, पहला हिंदू देवदान भाग के निवासियों का तथा दूसरा जैन पलिच चंदम लोगों का। दोनों ने मिलकर कुछ भूमि एक तालाब तथा पुष्प वाटिका के लिए दान में दिया तथा उसे कर मुक्त घोषित कर दिया। 1245 ईस्वी में उर्तुरकुरम तथा अमन कुंडी नामक ग्रामों में दो दो उर कार्य कर रहे थे। दूसरा सभा या महासभा। यह अग्रहार ग्रामों में होती थी। ऐसे ग्रामों को ब्रहो देय अथवा मंगलम भी कहा गया है। अग्रहार ग्रामों में मुख्यतः विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। इनमें शासन के लिए महाजन नामक संस्था थी जिनमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। तोंड मंगलम तथा चोल मंडलम के लेखों से अग्रहार के विषय में सूचना मिलती है। इससे स्पष्ट है कि काची तथा मद्रास क्षेत्रों में ऐसी कई सभाएं थीं। सभा मुख्यतः अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। इन्हें वरियम कहा गया है। इस शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है। तमिल में इसका अर्थ आय तथा कन्नड़ में कड़ी मांग है। शास्त्री इसके संस्कृत वीर वार्य का तमिल रूप मानते हैं जिसका अर्थ चूना हुआ है। एक लेख में सभा की कार्य समिति को वर्णम कहा गया है। सभा द्वार किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त व्यक्तियों को वरियर कहा जाता था। स्पष्ट है कि वरियम को कोई न कोई विशेष कार्य सौंपा जाता था। कहीं मंदिर का प्रबंध करने तथा कहीं देवदान भूमि का प्रमाणिक विवरण देने और उसकी सीमा लिखने का कार्य वरियम को दिया गया है। ज्ञात होता है कि जब सुचिंद्रम के मूल परुडय एक धार्मिक संगठन ने मंदिर का प्रबंध तो छोड़ दिया तो सभा ने इस कार्य के लिए दो वारियरों को नियुक्त किया। वारियम के सदस्यों को कोई पारिश्रमिक अथवा पुरस्कार नहीं दिया जाता था। टोंड मंगलम तथा चोल मंडलम के लेखों से अग्रहार के विषय में सूचना मिलती है। इससे स्पष्ट है कि काची तथा मद्रास क्षेत्रों में ऐसी कई सभाएं थीं। कभी कभी ये दोनों ही संस्थाएं एक ही ग्राम में कार्य करती थीं। जिन स्थानों में पहले से कोई बस्ती होती थी तथा वे बाद में ब्राह्मणों को दान में दे दिए जाते थे वहां उर तथा सभा साथ साथ कार्य करती थी। ऐसे गांव के मूल निवासी उर में मिलते थे जबकि नवागंतुक ब्राह्मण अपनी सभा गठित कर लेते थे। ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती थी। कहीं कहीं सभी वयस्क पुरुष इसके सदस्य होते थे जबकि कुछ स्थानों में यह एक निर्वाचित संस्था थी। ऐसी स्थिति में इसके सदस्यों का चुनाव ग्रामवासियों द्वारा किया जाता था तथा सदस्यों के लिए कुछ निर्धारित योग्यताएं भी होती थी। ग्राम सभा की बैठकें प्रायः मंदिरों तथा मंडपों में होती थी। बैठक के लिए निर्धारित स्थान को ब्रह्म स्थान कहा जाता था। कभी कभी गाँव के बाहर वृक्ष के नीचे अथवा किसी तालाब के तट पर भी ग्राम सभा की बैठक होती थी तथा इन्हें ढोल पीटकर आहूत किया जाता था। प्रत्येक सभा अथवा महासभा के अंतर्गत कई समितियां होती थीं जिन्हें वरियम कहा जाता था। ये समितियां अलग अलग विभागों का काम देखती थीं। कुछ प्रमुख समितियां इस प्रकार थीं। तोत वरियम यह उद्यान समिति थी। एरी वरियम यह तटांक तालाब समिति थी। तालाबों की मरम्मत के लिए एरी आयम नामक एक नियमित कर भी लिया जाता था। पून वरियम यह स्वर्ग स्वर्ण समिति थी। इसका कार्य संभवतः मुद्रा का नियमन करना था। पंचवार वरियम पांच समितियों के कार्य का निरीक्षण करना इसके जिम्मे था। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका कार्य राजा के लिए अनाज के रूप में भूमि कर प्राप्त करना था। संवत्सर वरियम यह वार्षिक समिति थी जो विभिन्न समितियों के कार्यों की देखरेख करती थी। उदासीन वरियम कुछ विद्वान इसे सन्यासियों की संस्था मानते हैं किंतु ऐसा लगता है कि इसका काम विदेशियों की देखरेख करना था। न्यायतार वरियम यह न्याय समिति थी। कोइलवारियम यह मंदिरों की के कार्यों की व्यवस्था करती थी। गण वारियम यह ग्राम के कार्यों की व्यवस्था के लिए थी। महाजन यह अग्रहर ग्रामों का शासन देखती थी। इसमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधि ही सम्मिलित थे। उत्तर में रूर से प्राप्त प्राणतक प्रथम कालीन दो अभिलेखों 1919 से 1921 ईस्वी से समिति के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। तदनुसार समिति के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। ग्राम के लोग जो 35 से 70 वर्ष की आयु के होते थे नेक होते थे, जिनके पास एक चौथाई वेली अर्थात 1.5 एकड़ भूमि होती थी, जो एक वेद तथा उसके भाष्य के ज्ञाता थे और जिनके पास निजी आवास होता था, वे ही समिति के सदस्य निर्वाचित हो सकते थे। अपराधी, चरित्रहीन, समिति की आय व्यय में घोटाला करने वाला तथा शूद्रों से संपर्क से दूषित हुआ व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। प्रत्येक वार्ड से एक एक व्यक्ति का चुनाव लॉटरी निकालकर किया जाता था। प्रत्येक उम्मीदवार का नाम अलग अलग पत्रों पर लिखकर एक बर्तन में रखा जाता था और उसे हिलाकर मिला दिया जाता था। तत्पश्चात किसी अबोध बच्चे से एक पत्र उठाने को कहा जाता था। वह जिस व्यक्ति के नाम का पत्र उठा लेता था वह समिति का सदस्य बन जाता था। इस प्रकार कुल 30 व्यक्ति चुने जाते थे जिन्हें विभिन्न समितियों में रखा जाता था। इसमें से 12 सदस्य जो वयोवृद्ध, विद्वान एवं उद्यान तथा तटाक समितियों में कार्य कर चुके होते थे। वार्षिक समिति में 12 उद्यान समिति में तथा 6 तटाक समिति में रखे जाते थे। समिति के सदस्य 360 दिनों तक अपने पद पर बने रहते थे। शेष 5 दिनों में वे अपना हिसाब किताब प्रस्तुत करते थे। तत्पश्चात वे अवकाश ग्रहण कर लेते थे। यद्यपि कोई सदस्य किसी अपराध का दोषी होता था तो उसे तत्काल पदच्युत कर दिया जाता था। इन सदस्यों के अवकाश ग्रहण करने के बाद समिति नियुक्त करने के लिए 12 विभागों के न्याय निरीक्षण समिति के सदस्य मध्यस्थ की सहायता से बैठक बुलाकर चुनाव करते थे। एक वर्ष के बाद पुनः मतदान होता था। 6-6 सदस्य स्वर्ण समिति तथा पंचवार वरियम के लिए चुने जाते थे। ऐसी व्यवस्था थी कि केवल वह व्यक्ति जो पिछले 3 वर्षों से किसी समिति का सदस्य नहीं रहा है ही सदस्य चुना जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक ग्रामवासी को समिति का सदस्य बनने का अवसर मिल जाता था। इन विभिन्न समितियों के अतिरिक्त एक सामान्य समिति होती थी जिसे संवत्सर वरियम कहा जाता था। इसका कार्य सभी समितियों के कार्यों की देखरेख करना होता था। जो व्यक्ति पहले किसी समिति का सदस्य रह चुका होता तथा पर्याप्त अनुभवी होता वही सामान्य समिति का सदस्य बन सकता था। महासभा को पेरुंगुरी, इसके सदस्यों को पेरुमक्कल तथा समिति के सदस्यों को वरियप्पे रू मक्कल कहा जाता था। ग्राम सभा को राज्य के प्रायः सभी अधिकार मिले हुए थे। उसके पास सामूहिक संपत्ति होती थी जिसे वह जनहित में बेच सकती थी अथवा बंधक रख सकती थी। आइए जानें चोल शासन के न्याय व्यवस्था को। चोल साम्राज्य में न्याय के लिए नियमित न्यायालयों का गठन किया गया था। लेखों में धर्मासन तथा धर्मासन भट्ट का उल्लेख मिलता है। धर्मासन से तात्पर्य संभवतः सम्राट के न्यायालय से है। न्यायालय के पंडितों को धर्म भट्ट कहा गया है, जिनकी परामर्श से विद्वानों का निर्णय किया जाता था। दीवानी तथा फौजदारी का अंतर बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। अपराधों में सामान्यतः जुर्माने होते थे। नरवध तथा हत्या के लिए व्यवस्था थी कि अपराधी पड़ोस के मंदिर में अखंड दीप जलवाने का प्रबंध करे। यह एक प्रकार का प्रायश्चित था, किंतु मृत्युदंड दिए जाने का उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। राजद्रोह भयंकर अपराध था जो स्वयं राजा द्वारा देखा जाता था। इसमें अपराधी को मृत्युदंड के साथ साथ उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाती थी। 13वीं सदी के चीनी लेखक चाउ जू कुआ चोल दंड व्यवस्था का इस प्रकार विवरण देता है। जब प्रजा में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो राजा का कोई मंत्री उसे दंड देता है। सामान्य अपराध होने पर अपराधी को एक लोहे के चौखट में बांध कर उसे 50, 70 या 100 डंडे मारे जाते हैं। जघन्य अपराधों में अपराधी का सिर काट दिया जाता है अथवा हाथी के पैर तले कुचलवा कर दंड दिया जाता है। कभी कभी लोगों को आत्मदाह द्वारा संपत्ति का स्वामित्व सिद्ध करना पड़ता है। अग्नि तथा जल द्वारा दिव्य परीक्षाओं का भी विधान था। गवाहियां भी ली जाती थी। पशुओं की चोरी के अपराध में व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर मंदिर को दिए जाने के उदाहरण मिलते हैं। इस प्रकार चोल न्याय प्रशासन सुसंगठित एवं निष्पक्ष था। भूमि तथा राजस्व। चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमिकर था। भूमिकर ग्राम सभाएं एकत्र करके सरकारी खजाने में जमा करती थी। इसके लिए चोल शासकों ने समस्त भूमि की माप कराई तथा उसकी उत्पादकता के आधार पर कर का निर्धारण किया। यह आधे से लेकर चौथाई भाग तक होता था। राजराज प्रथम तथा कुलोत्तुंग प्रथम के समय में क्रमशः एक और दो बार भूमि की माप कराई गई थी। भूमि की 12 से भी अधिक किस्मों का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक ग्राम नगर में रहने के स्थान, मंदिर, तालाब, कारीगरों के आवास, शमशान आदि सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। इसी प्रकार पिंडारी के लिए बकरों का बलि का स्थान, कुंभकार, स्वर्णकार, लौहकार, रजक, बढ़ई आदि के निवास स्थानों को भी करमुक्त रखा गया था। राजस्व विभाग की पंजिका को वरिपोत गक क ण क कहा जाता था, जिसमें सभी प्रकार की भूमि के ब्यौरे दर्ज किए जाते थे। कृषकों को यह सुविधा थी कि वे भूमि कर नगद अथवा द्रव्य के रूप में चुकाएं। चोलों के स्वर्ण सिक्के कलंजू या पोन कहे जाते थे। अकाल आदि दैवी आपदाओं के समय भूमि कर माफ कर दिया जाता था। दक्षिण में तालाब ही सिंचाई के प्रमुख साधन थे, जिन्हें रख रखाव की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं की होती थी। तालाबों की मरम्मत के लिए एरी आयम नामक एक कर भी वसूल किया जाता था। कभी कभी करों को वसूलते समय जनता के साथ कठोर व्यवहार किया जाता था, जिनसे उन्हें भारी कष्ट होता था। लोगों को पानी में डुबो देने अथवा धूप में खड़ा कर देने का भी उल्लेख मिलता है। एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि तंजौर के कुछ ब्राह्मण लगान चुकाने में असमर्थ होने पर अपनी जमीनें छोड़कर गांव से भाग गए तथा उनकी जमीन पड़ोस के मंदिर ने बेच दी गई। यदि भूस्वामी भूमि कर नहीं देता था तो कुछ समय के बाद उसकी भूमि दूसरे के हाथ बेच दी जाती थी। राजेंद्र चोल के समय में यह अवधि 3 वर्ष तथा कुलोत्तुंग के समय में 2 वर्ष की थी। बकाए कर पर ब्याज भी लिया जाता था। चोल इतिहास के परवर्ती युग में केंद्रीय शक्ति के निर्बल होने पर स्थानीय पदाधिकारी मनमाने ढंग से प्रजा का उत्पीड़न करने लगे। जनता द्वारा अन्यायपूर्ण करों के विद्रोह किए जाने के उदाहरण भी प्राप्त हैं। राजराज तृतीय तथा कुलोत्तुंग प्रथम के काल में इस प्रकार के विद्रोह किए गए। भूमि कर के अतिरिक्त व्यापारिक वस्तुओं, विभिन्न व्यवसायों, खानों, वनों, उत्सवों आदि पर भी कर लगते थे। आर्थिक जुर्माने से भी राज्य को बहुत अधिक धन प्राप्त होता था। नगरों में बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर वसूल करने का काम नगरम द्वारा किया जाता था। एक लेख में टटोपाटम, स्वर्णकारों, नमक, उपपायम, जल स्रोतों, बाटमाप, दुकानों आदि करों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें वसूल करने का अधिकार नगरम को ही था। नगर की सभा को नगरतार कहा जाता था, जिसे व्यापारिक समुदाय के लोग शामिल थे। राज्य की आय का व्यय अधिकारी तंत्र, निर्माण कार्यों, दान, यज्ञ, महोत्सव आदि पर होता था। चोल लेखों में विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, जैसे आयम, कुडी में, मर्मज्जाडी, कीड़ा ककाशु, पाड़ी कावल, वाशली तर्मम, कडईरे, आजीवन ककाशु, पेवरी, मगनमय आदि। अनेक करों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी वरितपोत गकक वरित तपो त गक कहलाते थे, जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र के आय व्यय का हिसाब रखते थे। सैन्य संगठन। चोल राजाओं ने एक विशाल सेना संगठित की थी। उनके कुल सैनिकों की संख्या 150,000 के लगभग थी। उनके पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिक के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्रीविजल, सिंघल, मालद्वीप आदि द्वीपों की विजय की थी। नौ विद्या संबंधी लेखों या पुस्तकों में चोल नाविकों द्वारा प्रकट किए गए विचारों को 15वीं-16वीं सदी के उनके अरब उत्तराधिकारी मान्य प्रमाण के रूप में उद्धत करते थे। चोल शासक स्वयं कुशल योद्धा थे और वे अधिकतर व्यक्तिगत रूप से युद्धों में भाग लिया करते थे। सेना के कई दल थे। लेखों में बर्ड पेर, धनुधारी सैनिक, अश्वारोही सैनिक, गज सेना आदि का उल्लेख मिलता है और पद्धति सैनिक। कुछ सैन्य दल नागरिक कार्यों में भी भाग लेते थे तथा मंदिरों आदि को दान किया करते थे। कुछ सैनिक सम्राट की सेवा में निरंतर उपस्थित रहते थे तथा उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते थे। ऐसे सैनिकों को वैलेक्कार कहा गया है। सैनिक देवताओं के बदले में, सैनिक सेवाओं के बदले में राजस्व का एक भाग अथवा भूमि देने की प्रथा थी। चोल सैनिक अत्यधिक अनुशासित एवं प्रशिक्षित होते थे। चोल सैनिक क्रूर तथा निर्दय भी होते थे। विजय पाने के बाद शत्रुओं की वे हत्या कर देते थे। यहाँ तक कि स्त्रियों तथा बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता था। शत्रु नगरों को भी वे ध्वस्त कर देते थे। पांड्य तथा पश्चिमी चालुक्य राज्यों में उनका व्यवहार इसी प्रकार का रहा। इस प्रकार चोल शासन व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन युग की यह एक उत्कृष्ट शासन प्रणाली थी, जिसमें केंद्रीय नियंत्रण तथा स्थानीय स्वायत्तता साथ साथ वर्तमान रही। चोल की शासन व्यवस्था का मूल्यांकन करते हुए इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री लिखते हैं, एक योग्य नौकरशाही चोलों की शासन व्यवस्था, एक योग्य नौकरशाही तथा सक्रिय स्थानीय संस्थाओं के बीच जो विविध प्रकार से नागरिकता की भावना का पोषण करती थी, शासन निपुणता तथा शुद्धता का एक उच्च स्तर प्राप्त कर लिया गया था, जो संभवतः किसी हिंदू राज्य द्वारा प्राप्त सर्वोच्च स्तर था। चोल राजवंश की धार्मिक दशा। चोल राजाओं के समय में तमिल प्रदेश में शैव तथा वैष्णव धर्मों का बोलबाला रहा। शैव नायनारों तथा वैष्णव आचार्यों ने इन धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक आंदोलन चलाया। इनमें भी शैव धर्म अधिक लोकप्रिय था। शिव की उपासना में भक्ति गीत लिखे गए, जिन्हें मंदिरों में गाया जाता था। इन शिव भक्ति गीतों का संकलनकर्ता नंबी अंडार नंबी को माना जाता है, जो राजराज तथा राजेंद्र चोल के समय में हुए। इस समय उत्तर तथा दक्षिण के शैव सिद्धांतों में समन्वय स्थापित हुआ। चोल राज्य के अधिकांश शासक उत्साही शैव थे, जिन्होंने भगवान शिव के अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। आदित्य प्रथम ने कावेरी नदी के तट पर शिव के विशाल मंदिर बनवाए थे। उसका उत्तराधिकारी प्राणतक भी शैव था, जिसने चिदंबरम स्थित नटराज मंदिर को स्वर्ण आभूषणों से सजाया था। प्रसिद्ध चोल सम्राट राजराज की शैव भक्ति तो उल्लेखनीय ही थी। उसने शिवपाद शेखर की उपाधि ग्रहण की तथा तंजोर में राज राजेश्वर के नाम से शिव का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल ने भी शैव धर्म के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहा जाता है कि उसने गंगा के तटवर्ती प्रदेशों में से अनेक शैव संतों को लाकर अपने राज्य के विभिन्न भागों में बसाया था। उसके समय में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। राजेंद्र चोल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप शैव धर्म दक्षिण का सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म बन गया। चोल नरेश कुलोत्तुंग प्रथम शिव का अनन्य उपासक था। इस वंश के कुलोत्तुंग द्वितीय के विषय में यह बताया जाता है कि शिव के प्रति अतिशय भक्ति के कारण उसने चिदंबरम मंदिर में रखी गई गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। चोल शासकों के उत्साह को देखकर उनके राज्य की प्रथा ने भी शैव धर्म को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार इस धर्म ने व्यापक जनाधार प्राप्त कर लिया। चोल शासकों ने शैव संतों को ही अपना राजगुरु मनोनीत किया था। राजराज प्रथम ने राजेंद्र चोल के समय क्रमशः ईशान शिव और शर्व शिव राजगुरु नियुक्त किए थे। प्रशासन पर इनका व्यापक प्रभाव था। शैव धर्म के साथ साथ चोलकालीन समाज में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस समय वैष्णव आलवरों का स्थान आचार्यों ने ग्रहण कर लिया। उन्होंने आलवरों की व्यक्तिगत भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया तथा भक्ति का समन्वय कर्म और ज्ञान से स्थापित करने का प्रयास किया। आचार्य तमिल तथा संस्कृत दोनों ही भाषाओं के विद्वान थे, अतः उन्होंने दोनों ही भाषाओं में वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार किया। आचार्य परंपरा में सबसे पहला नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। उन्होंने अंतिम आलवर मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। उन्होंने आलवरों के भक्ति गीतों को व्यवस्थित किया। न्याय तत्व की रचना का श्रेय उन्हें दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रेम मार्ग के दार्शनिक औचित्य का प्रतिपादन किया। परंपरा के अनुसार नाथ मुनि श्रीरंगम मंदिर की मूर्ति में प्रवेश कर ईश्वर में समाहित हो गए थे। दूसरे महान आचार्य आलवंदार हुए, जिसका एक अन्य नाम यमुनाचार्य भी मिलता है। आगमों की महत्ता का प्रतिपादित करते हुए उन्होंने उन्हें वेद के समकक्ष बताया। अपने गीतों के माध्यम से प्रपत्ति के सिद्धांत को उन्होंने अत्यंत सुंदर ढंग से अपने शिष्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। आचार्य परंपरा में रामानुज का सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उनका समय 1016 ईस्वी से 1137 ईस्वी सामान्यतः माना जाता है। उनका जन्म कांची के पास श्री पेरुम्बुदूर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव था। जन्म के कुछ दिन बाद उनके पिता का निधन हो गया। तिरुकोट्टियूर में महात्मा नाम्बी ने इन्हें ओम नमो नारायणाय नामक अष्टाक्षर मंत्र दिया। कांची के यादव प्रकाश से उन्होंने वेदांत की शिक्षा ली थी। कुछ समय बाद उनका यादव प्रकाश से मतभेद हो गया तथा उन्होंने वैष्णव आचार्य यमुनाचार्य की शिष्यता ग्रहण कर ली। यमुनाचार्य की मृत्यु के बाद रामानुज उनके संप्रदाय के आचार्य बने। उन्होंने ब्रह्मसूत्र सूत्र पर भाष्य लिखा, जिसे श्री भाष्य कहा जाता है। वेदांत सार, वेदांत द्वीप, वेदांत संग्रह, गीता भाष्य आदि उनके कुछ अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं। उनका मत विशिष्ट द्वैत के नाम से प्रसिद्ध है। शंकर के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए रामानुज ने प्रतिपादित किया कि ब्रह्म अद्वैत होते हुए भी चित जीव तथा अचित प्रकृति शक्ति द्वारा विशिष्ट होता है। मोक्ष के लिए उन्होंने ज्ञान के स्थान पर भक्ति तथा प्रपति को आवश्यक बताया, जिससे प्रसन्न होकर ईश्वर मोक्ष प्रदान करता है। रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। श्रीरंगम त्रिचनापल्ली के मठ में रहते हुए उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महान कार्य किए। उन्होंने अपने प्रयासों के फलस्वरूप यह धर्म समाज में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया। संभव है कि इसका प्रभाव चोल के कुछ धर्म शैव पर पड़ा तथा इससे क्षुब्ध होकर किसी कट्टर शैव चोल शासक ने उन्हें उत्पीड़ित किया हो, किंतु इस चोल राजा की पहचान निश्चित नहीं है। कुछ विद्वान इसे अधिराजेंद्र मानते हैं। सामान्यतः चोल काल शैवों तथा वैष्णवों के परस्पर सद्भाव एवं सम्मिलन का काल रहा तथा रामानुज की कथा अपवाद स्वरूप थी। इस समय शिव के समान विष्णु के समान में मंदिर बनवाए गए तथा मठों की स्थापना की गई। मंदिर तथा मठ चोलयुगीन धार्मिक जीवन के केंद्र बिंदु थे। यद्यपि चोल काल में शैव एवं वैष्णव धर्म का ही व्यापक प्रचार था, तथापि इस काल को धार्मिक असहिष्णुता का काल नहीं कहा जा सकता। अधिकांश चोल शासक धर्म सहिष्णु थे तथा उनके राज्य में बौद्ध एवं धर्म जैन धर्म भी निवास करते थे। इस समय नेगत नेगपत्तम कांची तथा श्रीमूलवास में बौद्धों के विहार स्थित थे। कोलोतुंग प्रथम ने नेगपत्तम को विहार को दान दिया। जैन धर्म को भी चोल शासकों तथा जनता के संरक्षण प्रदान किया। इस काल में जैन मंदिरों की भूमि के कर माफ कर दिए गए। राज प्रथम की बहन कुंदवय के विषय में कहा गया है कि उसने एक ही स्थान में शैव वैष्णव तथा जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। किसी भी चोल राजा द्वारा बौद्ध या जैन धर्म के प्रति अत्याचार किए जाने का प्रमाण नहीं मिलता है। चोलकालीन समाज में आस्तिक धर्मों के प्रचलन के कारण वैदिक यज्ञों एवं कर्मकांडों का अनुष्ठान प्रायः बंद हो गया। मूर्ति पूजा का प्रचलन काफी बढ़ गया। मंदिरों में मूर्तियां स्थापित की गईं जहां भक्तगण देवी देवताओं की उपासना किया करते थे। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते, दान देते तथा व्रत उपवास आदि करते थे। पौराणिक धर्मों के साथ साथ इस समय तांत्रिक, शाक्त, कापलिक आदि संप्रदायों के कुछ अनुयायी भी समाज में विद्यमान थे। इस प्रकार चोल राजाओं की व्यक्तिगत रुचि तथा संतों एवं आचार्यों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप चोल काल में शैव एवं वैष्णव धर्मों का पुनरुत्थान हुआ तथा नास्तिक संप्रदायों का प्रभाव क्रमशः समाप्त हो गया। चोल शासकों के शैव धर्म के प्रति अतिशय उत्साह के कारण प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज को तमिल देश छोड़कर कुछ समय के लिए मैसूर चला जाना पड़ा था। अधिकांशतः चोल नरेश धर्म सहिष्णु थे और उनके राज्य में जैन तथा बौद्ध धर्मावलंबी भी निवास करते थे। कुछ चोल शासकों ने वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान किया। साहित्य। चोल राजाओं का शासनकाल तमिल भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए प्रसिद्ध है। तमिल लेखकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जैनगुंदार था। वह चोल शासक कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था और उसने कलिंग तुर्पणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें कुलोतुंग के कलिंग युद्ध की घटनाओं का वर्णन है। कुलोतुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन हुआ, जिसमें तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचना की। यह तमिल साहित्य का महाकाव्य है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण की कथा से मिलती जुलती है। अन्य ग्रंथों में शेक्किल्लार तथा पेरियम पुराणम, पुलेग गेनिंद का नलवेम्ब, तिरुक देवर का जीवन चिंतामणि, तोल्ला मोल्ली का सूलामणि आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चोल शासकों ने अमृत सागर तथा बुद्धिमित्र जैसे प्रसिद्ध जैन तथा बौद्ध विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। अमृत सागर ने याप परुंगलम तथा याप रुगल कारिकगय नामक दो प्रमाणिक ग्रंथ छंद शास्त्र प्रोसडी पर लिखा। बुद्धिमित्र की प्रमुख कृति वीर सोल्लियम है। वह चोल शासक वीर राजेंद्र को महान तमिल विद्वान बताता है। चोल काल में वैष्णव लेखकों ने अपने ग्रंथ संस्कृत में लिखे। ऐसे लेखकों में नाथमुनि, यमुनाचार्य तथा रामानुज के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कला और स्थापत्य। चोलवंशी शासक उत्साही निर्माता थे और उनके समय में कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। चोलयुगीन कलाकारों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन पाषाण मंदिरों एवं मूर्तियों बनाने में किया। द्रविड़ वास्तुशैली का जो प्रारंभ पल्लव काल में हुआ उसका चरम उत्कर्ष इस काल में देखने को मिलता है। चोल काल दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। कलविद फर्गुसन के अनुसार चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया। दे कन्विंस्ड लाइक जैंट्स एंड फिनिश्ड लाइक ज्वेलर्स। चोलकालीन मंदिरों के रूप दो दिखाई देते हैं। प्रथम के अंतर्गत प्रारंभिक काल के वे मंदिर हैं जो पल्लव शैली से प्रभावित हैं तथा बाद के मंदिरों की अपेक्षा काफी छोटे आकार के हैं। दूसरे रूप के मंदिर अत्यंत विशाल तथा भव्य हैं। इनमें हम द्रविड़ शैली का पूर्ण परिपाक पाते हैं। चोल शासकों ने अपनी राजधानी में बहुसंख्यक पाषाण मंदिरों का निर्माण करवाया। चोल शासक के प्रारंभिक स्मारक पुडुक्को टटय जिले से प्राप्त होते हैं। इनमें विजयालय द्वारा नर्तामलाई में बनवाया गया चोलेश्वर मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह चोल शैली का एक सुंदर नमूना है। इसमें एक वर्गाकार प्रकार के अंतर्गत एक वृत्ताकार गर्भगृह बना हुआ है। प्रकार तथा गर्भगृह के ऊपर विमान है। यह चार मंजिला है। प्रत्येक मंजिल एक दूसरे के ऊपर क्रमशः छोटी होती हुई बनाई गई है। नीचे के तीन मंजिले वर्गाकार तथा सबसे ऊपरी गोलाकार है। इसके ऊपर गुंबदाकार शिखर तथा सबसे ऊपरी भाग में गोल कलश स्थापित है। सामने की ओर घिरा हुआ मंडप है। बाहरी दीवारों को सुंदर भित्ति स्तंभों से अलंकृत किया गया है। मुख्य द्वार के दोनों ओर ताक में दो द्वारपाल की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। मुख्य मंदिर के चारों ओर खुले हुए बरामदे में सात छोटे देवस्थान हैं जो मंदिर ही प्रतीत होते हैं। ये सभी पाषाण निर्मित हैं। इस प्रकार का दूसरा मंदिर कन्नानूर का बाल सुब्रमण्यम मंदिर है जिसे आदित्य प्रथम ने बनवाया था। इसकी समाधियों की छतों के चारों कोनों पर हाथियों की मूर्तियां हैं। विमान के शिखर के नीचे बना हुआ हाथी सुब्रमण्यम का वाहन है। इसी समय का एक अन्य मंदिर कुंभकोणम में बना नागेश्वर मंदिर है। इसकी बाहरी दीवारों की ताखों में सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। गर्भगृह के चारों ओर अर्ध नारी ब्रह्म दक्षिण मूर्ति के साथ साथ बहुसंख्यक मनुष्यों की मूर्तियां ऊंची रिलीफ में बनी हैं जो अधिकाधिक सुंदर हैं। मानव मूर्तियां या तो दानकर्ताओं की हैं या समकालीन राजकुमारों तथा राजकुमारियों की हैं। आदित्य प्रथम के ही समय में तिरुकुट्टलय के सुंदरेश्वर मंदिर का भी निर्माण हुआ। इसके परकोटे में गोपुरम बना हुआ है। विमान दुल्ला डबल स्टोरीड है तथा इसमें एक अर्धमंडप भी है। इस मंदिर में द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। प्राणतक प्रथम के राज्यकाल में निर्मित श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल मंदिर निर्माण कला के विकास के द्वितीय चरण को व्यक्त करता है। यह कुल मिलाकर 50 फीट लंबा है। इसका वर्गाकार गर्भगृह 25 फीट का है तथा सामने की ओर का मंडप 25 फीट गुणे 20 फीट के आकार का है। मंडप के भीतर चार स्तंभों पर आधारित एक लघु कक्ष है। मंडप तथा गर्भगृह को जोड़ते हुए अंतरार वर्टिबल बनाया गया है। मंदिर का शिखर 50 फीट ऊंचा है। गर्भगृह की बाहरी दीवार में बनी ताखों में एक पेड़ के नीचे भक्तों सिंहों तथा गणों के साथ बैठी हुई दुर्गा की दक्षिण मूर्ति तथा विष्णु एवं ब्रह्मा की खड़ी हुई मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती हैं। दुर्गा के साथ लक्ष्मी तथा सरस्वती की मूर्तियां भी मिलती हैं। सभी तषण अत्यंत सुंदर हैं। इस प्रकार वास्तु तथा तषण दोनों की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट कलाकृति है। चोल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष त्रिचनापल्ली जिले में निर्मित दो मंदिरों तंजौर और गंगैकोंड चोलपुरम के निर्माण में परिलक्षित होता है। तंजौर का भव्य शैव मंदिर जो राजराजेश्वर अथवा बृहदीश्वर नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर एक उत्कृष्ट कलाकृति है जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य को चरमोत्कर्ष को खोतिक करती है। इसे द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। इसका विशाल प्रांगण 500 फीट गुणे 250 फीट के आकार का है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मंदिर चारों ओर से एक ऊंची दीवार से घिरा है। मंदिर का आकर्षण गर्भगृह के ऊपर पश्चिम में बना हुआ लगभग 200 फीट ऊंचा विमान है। इसका आधार 82 वर्ग फुट है। आधार के ऊपर 13 मंजिलों वाला पिरामिड के आकार का शिखर 190 फीट ऊंचा है। मंदिर का गर्भगृह 44 वर्ग फीट का है जिसके चतुर्दिक 9 फीट चौड़ा पदशिनापथ निर्मित है। पदशिनापथ की भीतरी दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्र बने हैं। गर्भगृह के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है जिसे अब बृहदीश्वर कहा जाता है। प्रवेश द्वार पर दोनों ओर ताक में दो द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। मंदिर में बहिर्भाग में विशाल नंदी की एक एकाश्मक मूर्ति बनी है। मंदिर की दीवारों में बने ताखों में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। इस प्रकार भव्यता तथा कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से यह दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ हिंदू स्मारक है। पर्सी ब्राउन के शब्दों में इसका विमान न केवल द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम रचना है अपितु इसके समस्त भारतीय स्थापत्य कला की कसौटी भी कहा जा सकता है। गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासन काल में हुआ। उसने यहाँ बृहदीश्वर नामक भव्य शैव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी योजना तंजौर मंदिर के ही समान है लेकिन दोनों में कुछ विषमता भी मिलती है। यह 340 फीट लंबा 110 फीट चौड़ा है। इसका 8 मंजिला पिरामिडाकार विमान 100 वर्ग फीट के आधार पर बना है तथा 86 फीट ऊंचा है। विमान के ऊपर गोल स्तूपिका है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है जिसके बाद में 175 फीट गुण 95 फीट के आकार का महामंडप है। मंडप तथा गर्भगृह को जोड़ते हुए अंतराल बनाया गया है। मंडप एवं अंतराल की दोनों छतें सपाट हैं। अंतराल के उत्तर तथा दक्षिण की ओर दो प्रवेश द्वार बने हैं जिनसे होकर गर्भगृह में पहुंचा जाता है। मंडप 250 पंक्तिबद्ध स्तंभों के आधार पर बना है। मंडप के स्तंभ अलंकृत तथा आकर्षक हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ एवं विविध प्रकार के अलंकरण उत्कीर्ण हैं जो तंजौर मंदिर की उपेक्षा अधिक सुंदर एवं कलापूर्ण है। तंजौर तथा गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर चोल स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करते हैं। इसमें द्रविड़ वास्तु के विमान निर्माण योजना की भव्यता तकनीक तथा अलंकरण की पराकाष्ठा भी परिलक्षित होती है। साथ ही साथ ये चोल सम्राटों की महानता और गौरव गाथा को आज भी सूचित कर रहे हैं। राजेंद्र चोल के उत्तराधिकारियों के समय में भी मंदिर निर्माण की परंपरा कायम रही। इस समय कई छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया। इसमें मंदिरों के दीवारों पर अलंकृत चित्रकारियां एवं भव्य मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। राजराज द्वितीय तथा कुलोत्तुंग तृतीय द्वारा बनवाए गए क्रमशः द्वार समुद्रम का एरावतेश्वर का मंदिर तथा त्रिभुवनम का कंप हरेश्वर का मंदिर अत्यंत भव्य एवं सुंदर है। इस मंदिर का निर्माण भी तंजौर मंदिर की योजना पर किया गया है। एरावतेश्वर मंदिर का शिखर 5 तल्ला है जिसका सबसे ऊपरी तल्ला पाषाण के स्थान पर ईंटों से बनाया गया है। विमान के सामने मंडप तथा उसके आगे अग्र मंडप बनाए गए हैं। ये पहियेदार रथ की भांति है जिन्हें हाथी खींच रहे हैं। मंडपों में अलंकृत स्तंभ लगाए गए हैं। उत्तर की ओर अम्मन मंदिर तथा दक्षिण की ओर एक दूसरा स्तंभ युक्त मंडप है। मंदिर की बाहरी दीवार में बने आलों में मूर्तियां उत्कीर्ण हैं जो बृहदेश्वर मंदिर जैसी ही हैं। मंडप का ऊपरी भाग नटराज सभा कहा जाता है। इसमें बने आलों में ऋषि मुनियों की शांत एवं उपदेश देती हुई मुद्रा में मूर्तियां उकेरी गई हैं। कालांतर में इस मंदिर का प्रभाव कोणार्क के सूर्य मंदिर पर पड़ा। वास्तु तथा तक्षण दोनों ही दृष्टियों से यह मंदिर उल्लेखनीय है। कंपहेश्वर, जिसे त्रिभुवनेश्वर भी कहा जा सकता है, की योजना भी ऐरावतेश्वर मंदिर के ही समान है। इसमें मूर्तिकारी की अधिकता है। मूर्तियां कलात्मक दृष्टि से अच्छी हैं। नीलकंठ शास्त्री ने इसे मूर्ति दृघा कहा है। पर्वती चोल कला पर चालुक्य, होयसल तथा पांड्य कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। परिणाम स्वरूप मंदिरों के विमान तथा गोपुरम की रचना में पहले से कुछ विभिन्नता मिलती है। विमान के पास शाला प्रकार का अमन मंदिर बनाया जाने लगा, जो इस कला काल की नई विशेषता है। यह वस्तुतः देवी मंदिर है। गोपुरम में नया अंतर यह आया कि इनमें कई तल्ले बनने लगे तथा ऊंचाइयां बढ़ गईं। कभी कभी ये विमान से ऊंचे हो जाते थे। स्तंभ पलते किंतु अधिक अलंकृत बनाए जाने लगे।